हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के इस महान ज्ञान यज्ञ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवत गीता में मुख्य पांच विषय हैं। आपको पता है भागवतम में कितने विषय हैं? भागवत में 10 हैं और भगवत गीता में 5 हैं। पहला है जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और पांचवा है कर्म। जीव के विषय में आपको बताया क्या है, भगवान की परा प्रकृति है जो आत्मा हमारे हृदय में रहती है, उसका मापदंड कितना है, जो बाल का टिप है, पहले वाला जो बाल का नोक है उसके 10,000वें हिस्से की बराबर इसकी पैमाइश है और ये पूरे शरीर को यही पावर दे रहा है और ये भगवान का अंश है, भगवान का दास है। और उसके बाद है ईश्वर यानी भगवान। भगवान के विषय में आपको बहुत बहुत बताया, भगवान के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, भगवान कैसे होते हैं, भगवान के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, कौन भगवान है, भगवान के कितने फेस हैं, उस विषय में आपको पूरी चर्चा की एकदम क्लियर। उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति के विषय में आपको बताया भगवान की कितनी शक्तियां हैं, ये प्रकृति जो है ना 24 तत्वों से मिलकर बनी है उसमें जो कुछ भी है यानी कृष्ण के अतिरिक्त जो भी माया है वो सब प्रकृति है। और चौथा है काल। काल के विषय में आपको पता है, समय के विषय में लास्ट हमारा लेक्चर था और अब हमारा हम अंतिम स्टेप पर आ गए हैं। अब हम बात करेंगे कर्म के विषय में। अब कर्म के विषय में सुनिए, कर्म का सीधा अर्थ होता है कार्य, यानी कोई भी काम। आप कोई भी काम, अब देखिए इस संसार में किसी भी कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। आप कोई भी कार्य करते हो ना, उसके बदले में कोई ना कोई हर अमल का एक रद्द अमल होता है। न्यूटन ने ही साबित किया था, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। एक बार न्यूटन को स्कूल से निकाल दिया तो फिर वो एक कुएं के साथ में बैठ गया और कुएं के पास बैठा था, सब लोग आ रहे थे कुएं से पानी निकाल रहे थे। जो रस्सी खींच रहे थे ना पानी, तो वो तो अपना काम कर रहे थे, रस्सी खींच खींच के पानी निकाल रहे थे, लेकिन वो रस्सी जो जिस पत्थर पे अटकी हुई थी ना उस पर घिसते घिसते क्या हो गया था, एक निशान पड़ गया था। उसी वो निशान, जैसे जैसे वो कार्य हो रहा था उसका कोई ना कोई रिएक्शन, यानी कि ऐसे ही वो, उसको ऐसा लगा कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है, कोई ना कोई एक्शन का, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर ये बता दिया जाए कि हर कार्य करते हैं, चाहे हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा रिएक्शन निकलता है, प्रतिक्रिया। बुरा कार्य करेंगे तो बुरी प्रतिक्रिया यानी बुरा रिएक्शन होगा। आप अपने मित्र को जोर से लात मारोगे तो क्या मिलेगा, लात मिलेगी। अगर किसी को प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। सीधा हिसाब किताब। कर्म का सिद्धांत जो है वो बहुत सरल और सीधा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह के कर्मों का वर्णन किया है और उनके नाम है कर्म, विकर्म और अकर्म। इनके विषय में मैं आपको बताऊं, कर्म का अर्थ है हमारे जीवन में कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें अवश्य करने होते हैं, जैसे सुबह उठना है, स्नान करना है, ब्रश करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, ऑफिस जाना, ये कर्म है। इनको नित्य कर्म भी कहते हैं, ये हर कोई करता है, उसकी कोई ना कोई डेली रूटीन है उस हिसाब से करता है। और विकर्म, सेकंड नंबर पे है विकर्म। विकर्म का अर्थ है भगवान के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसे विकर्म कहा जाता है, यानी जो वेद विधि के अनुसार नहीं होते हैं, गलत कार्य जिनको हम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में विकर्म का मतलब होता है पाप कर्म। मतलब इस दुनिया में जब कोई सिर्फ कर्म करते हैं इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, जो विकर्म करेंगे वो नरक में चले जाएंगे। अब देखिए इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उसके वो दो हो सकते हैं, मतलब उस कार्य को जो आप जो भी कार्य करते हो उसके कारण जो है वो दो हो सकते हैं, या तो वो पूर्व जन्म के कार्यों का प्रतिफल हो, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हो मे बी पॉसिबल कि पिछले जन्म में आपने कोई कार्य किया हो उसके रिएक्शन में ये कार्य आप कर रहे हो। अब या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हो वो नया कर्म कर रहे हो, अभी तक उसका कोई रिएक्शन नहीं, आप वो पहली बार ही कर रहे हो। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, कोई पूरा दिन मेहनत करता है और उसे बहुत कम, इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से ना कमाता है, और कोई एक फोन कॉल करता है और 2 लाख रुपए साइन करके उसको मिल दिए जाते हैं। मतलब आज हम जो कार्य कर रहे हैं वो पूर्व जन्म के कार्यों का फल हो सकता है, अथवा हम कोई नया कार्य कर रहे हैं जिसका फल आगे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हो सकता है कि अभी हम जो कार्य कर रहे हैं उसका फल आगे मिलेगा, या फिर ये जो हम भुगत रहे हैं वो हमने जो कार्य किया है उसका फल। इन दोनों में से क्या है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है, इसको आप नहीं समझ सकोगे कि अभी आप जो कार्य कर रहे हो। अच्छा, कोई लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे राधा गोविंद महाराज की मैं कथा में बैठी थी तो वो बता रहे थे कि किसी ने मुझसे कहा कि हमें अपने अपराध याद नहीं है ना, भगवान हमें सारा दिन सजाएं देते रहते हैं, अगर सजा मिल रही है और मुझे पता भी नहीं है कि मेरा क्या अपराध है, तो मैं उसको हजम, मतलब मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, मुझे फिर भी सजा मिल रही है। भगवान को याद कराना चाहिए, मतलब भगवान हमें पहले ही याद करा दे, पब्लिक में ये ऐलान कर दे कि भाई इस वजह से इसको सजा मिली है, पहले से पता हो हमें, तो फिर है ना हम उस सजा को ये सोचकर एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये मैंने इतनी बड़ी गलती की थी इसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही। उसे पता होना चाहिए। तो पता है राधा गोविंद महाराज ने उसका क्या उत्तर दिया? बोला हमारे कर्म इतने कंडम है, हमारे अपराध इतने कंडम है कि हम एक व्यक्ति के सामने भी वो अपराध नहीं करना चाहते। हम कभी चाहेंगे कि किसी मेरे किसी अजीज को या मेरे किसी मित्र को या मेरे किसी को भी संसार में किसी को मेरे अपराधों के विषय में पता हो चले, किसे पता चले कि मैं कितना घिनौना बंदा हूँ, किसी को मतलब इवन आप खुद से भी कभी शर्म आने लगती है जब हम अपने अपराधों के विषय में सोचते हैं। तो अगर भगवान ने ये ऐसे डिस्प्ले में बता दिया या फिर शास्त्रों में लिख दिया गया कि इस तरह से अपराध, इस अपराध का सजा तुम्हें ये मिल रही है, या आकाशवाणी होती रहे कि भाई हाँ ये देखो तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हें मिली है, तो मनुष्य उस जो उसकी बदनामी हो रही है, मतलब जो उसकी बेइज्जती हो रही है ना, उस बेइज्जती से ही मर जाएगा, अपने अपराधों की लिस्ट सुन ही नहीं सकेगा। इतने हमारी घृणित कर्म होते हैं, वो तो भगवान की कृपा है कि छुपा दिया हमारे अपराधों को, अपने हृदय में रखा। परमात्मा सब जानते हैं कि हमारी सोच कितनी खराब है, हम कितने अपराध कर रहे हैं, परमात्मा को सब कुछ पता है, लेकिन किसी को नहीं बताते। बोलते नहीं, तुम सेव रहो ताकि आप इतना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकोगे जितने आपके आपके अपराध हैं, इसलिए आपको बताते ही नहीं है, किसी को बताते ही नहीं है, बस चुपके से पनिशमेंट। अब जाहिर सी बात है, कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा, तो चुपके से पनिशमेंट दे देते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता है कि आपने अपराध कौन सा किया था। एक दफा मैं एक पार्टी में गई, वहां पर एक भगत आए थे, तो वेटर जो है वो सबको सर्व कर रहा था, जूस सबको सर्व कर रहा था। तो फिर ना एक भगत के पास जब वो पहुंचे तो वो जूस उनके ऊपर गिर गया, वो इतनी अच्छी साफ सुथरी वाइट ड्रेस पहन कर आए थे और उनके ऊपर जूस गिरा दिया। तो जो होस्ट थे उन्होंने वेटर को इतना गुस्सा किया, बोला तुम्हें दिखता नहीं है, अंधे हो तुम, हमारे गेस्ट हैं, आपने इनके ऊपर जूस गिरा दिया, उनकी पूरी ड्रेस खराब कर दी। तो फिर वो भक्त ने पता है क्या बोला, वेटर को बोला कि देखो अभी आपने जो ये कार्य किया है ना, या तो ये पहले किसी जन्म में तुम्हारे साथ ऐसा किया उसका रिएक्शन होगा, या फिर अभी नया कर्म आपने बनाया होगा। तो फिर अगर ये पहले किसी जन्म का रिएक्शन है तो वो तो मैंने भुगत लिया, अब हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, अगर कोई और भी हिसाब किताब है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, बस आप मुझे क्षमा कर दो। और अगर आपने ये पहली बार कर्म किया है ना, मतलब अभी तक मैंने पहले नहीं किया था, आपने ये पहली बार किया है तो, और इसके लिए हो सकता है इसका रिएक्शन होगा, तो इसके लिए मैं आपको अभी से क्षमा कर देता हूँ, मुझे आपसे बदला नहीं लेना है, मैं आपको हृदय से क्षमा कर देता हूँ, मुझे वापस इस कर्म के रिएक्शन के लिए जन्म नहीं लेना है, मैंने माफ कर दिया आपको, जाओ। अब इस तरह से तो करोड़ों करोड़ों कर्म हमने किए होंगे, हर सांस के साथ मनुष्य कर्म करता है। भगवान कहते हैं कि आप न एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर मनुष्य नहीं रह सकता। भगवद गीता में ऐसा श्लोक आता है कि एक क्षण के लिए भी और कुछ नहीं, मनुष्य सांस तो लेगा ना, सांस लेने के साथ करोड़ों कीटाणुओं का नाश हो रहा होता है, हमें नहीं पता, वो भी जीव आत्मा है। हम हर क्षण अपराध कर रहे होते हैं, तो फिर इन सारे अपराधों को यदि रिएक्शंस को हमें भोगना पड़े तो कितनी दफा तो हमें खाली कीटाणु बन के आना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि कर्मों का जो चक्कर है ना उसको खत्म करें, ताकि पूर्व जन्म के कर्म के बंधन जो है उनसे मुक्त हो जाएं और आगे हमारा नया कर्म भी ना बने। तो ऐसा कर्म एकमात्र अकर्म है। मैंने आपको तीन कर्मों के विषय में बताया, एक तो कार्य जो आप करते हो, दूसरा है विकर्म जो कि शास्त्र के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ होता है, और तीसरा है अकर्म। अब अकर्म क्या है? अकर्म करने से कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और नया कर्म करने के बंधन में नहीं फंसते हैं, और ऐसा कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के खुश होने से, और मरने के बाद हम भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ना तो कर्म करता है ना विकर्म करता है, वो तो केवल अकर्म करता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो ना तो कर्म करते हैं ना विकर्म करते हैं, वो तो केवल अकर्म कहते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन पहले ही बता दिया कि वो मूर्ख ये नहीं जानते कि कर्म के बिना इस संसार में कोई रह ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 5, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत् कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणः। भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर बलात् प्रकृति आपसे कर्म करवाती है, कर्म करना पड़ता है बाय फोर्स। प्रकृति आपको कभी भी ऐसे आप बैठे हुए हो तो भी बैठने का कार्य कर रहे हो, उठे हुए हो तो आप उठने का कार्य कर रहे हो, सोए हुए हो तो सोने का कार्य कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो सांस लेने का कार्य कर रहे हो। अतः भगवान कहते हैं कोई भी एक क्षण भर के लिए, साफ साफ लिखा है नहीं कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, वो कर्म किए बगैर एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। तो यहाँ पर बताया भगवान कहते हैं कि एक सेकंड भी कोई कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, तो कर्म करना तो अनिवार्य है, परंतु कौन से कर्म करें? यदि विकर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, कर्म करेंगे तो यहीं रह जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए। दूसरे शब्दों में भगवान की भक्ति जिसको अकर्म कहा जाता है, कृष्ण की भक्ति करने से पूर्व जन्मों से मुक्ति हो जाती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 10.66 में अहम तो हम सर्व पापे भी, मैं तुम्हारे समस्त कर्मों के अनुसार जितने पाप होंगे ना उसका पूरा लेखा जोखा खत्म कर दूंगा, नए कर्म नहीं बनेंगे और मरने के बाद भगवान के दाम में चले जाएंगे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण सार देते हुए अंत में भगवान श्री कृष्ण ने 18.66 में भगवान ने साफ साफ कहा सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम श्रम व्रजा, सारे धर्मों को छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अब आपको अपराध की सजा मिल रही है ना, आपको दुख क्यों मिल रहा है? अपराध किए हैं इसीलिए, हे अर्जुन जीवन में भले कितने ही पाप किए हों, अपराध किए हों, अब सभी छोटे बड़े धर्मों मातृधर्म पितृधर्म देश धर्म कुल धर्म इन सभी धर्मों को छोड़ दो। और भगवान ने कहा माम एकम श्रम रजा, मेरी शरण में आ जाओ, यदि कोई आ जाएगा तो क्या करूंगा? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं उसे समस्त पापों से मुक्त करूंगा और मोक्षयिष्यामि मा सुच। तो भगवद गीता का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं। कुछ लोग भक्ति के नाम से बहुत बहुत डरते हैं, लेकिन ये भक्ति ही है जो आपको भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। भगवान वहां पर वेदव्यास जी कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरण बुज्जम हरेर भजन पक्कोथ पतेतो यदि यत्र कभा वा भद्रम अभूमश्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यानी यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्रोन्मोदित कार्यों को ना करे, यानी कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, अगर आप फिर शास्त्रों के अंदर दूसरे जितने भी कार्य हैं, मतलब यज्ञ करना, दान देना और अन्य कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान को प्रसाद अर्पण कर रहे हो, वो कार्य कर रहे हो, और दूसरे दूसरे कि भाई इस दिन है ना ये करना होता है, इस दिन ये करना होता है, अमावस्या को ये करो, पूर्णिमा को ये करो, दूसरे दूसरे कार्य जो लिखे हुए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, यदि वो नहीं करता है तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई नहीं है, किंतु यदि वह शास्त्रोन्मित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत को ना स्वीकार करे, यानी शास्त्र में जितने भी लिखे हुए हैं भाई आज आखाड़ी जाए ये करो, आज सातम है ये करो, आज ना टुब्बी है ये करो, आज ये करो, आज वो करो, जितने भी करो करो लिखे हुए हैं वो सारे करें, और भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान को प्रसाद नहीं खिलाता है, बस जप नहीं करता है, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता है, तो साफ साफ लिखा है कृष्ण भावना ना हो तो ये सारे कार्य जो उसने किए हैं उसके सारे कार्य का उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। श्रम एव ही केवलम। जिस तरह एक माली जो है, एक किसान जो है खेत में बीज डालता है और उसका कोई फल नहीं, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, बीज भी डाल दिया, उसको खेत को जोता भी, बेलें भी चलाए, ट्रैक्टर चलवाए और पानी वानी दिया, खाद वाद डाली, लेकिन फिर भी फल नहीं निकलता ना, कभी ऐसा होता है कीड़ा लग जाता है। उसी तरह आपने यदि अपने सारे कार्य शास्त्रोन्मोदित किए, लेकिन अगर उसमें कृष्ण भक्ति का एक केमिकल नहीं डाला तो समझो कीड़ा लग जाएगा, आपकी सारी फसल खराब हो जाएगी। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। हमें हमेशा भगवान के नाम, अब भगवान का नाम क्या करेगा, पिछले सारे जितना हमारे हृदय की मलिनता है उसको दूर कर देगा और हम आगे कोई भी बुरा कर्म नहीं बनेगा, कोई कर्म बनेगा ही नहीं, भक्ति से कर्म नहीं बनता है। अब भक्ति करनी जरूरी है। कुछ लोग जो होते हैं वो भक्ति के नाम से बहुत डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम भक्ति करेंगे ना तो हमें बहुत बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, संत बनना पड़ेगा, या फिर भगत की लाइफ बहुत टेस्टलेस होती है, ऐसा बनना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए भक्तों, हम सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कोई भी चीज, एक हमें अगर डिग्री भी चाहिए होती है तो बचपन से लेकर हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद हम स्कूल पढ़ते हैं, पूरा जीवन लगाते हैं। किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को सीए करना होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती होती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, और वो फल जब प्राप्त होता है वो भी सिर्फ क्षणिक है। अब डॉक्टर बनने के लिए 15 साल तो स्टडी करोगे, उसके बाद 4-5 साल आप है ना प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद है ना 20-25-30 साल में कहीं जाके डॉक्टर बनोगे, और उसके बाद आप अर्जुन, यानी 30 साल आपने दे दिए, अब आपके पास 15-20 साल रह गए बाकी उसको आपको यूज करने के लिए, उसको कमाने के लिए। तो इतनी छोटी सी चीज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? और आपको ये भी बता दूं कि भगवान की भक्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कलयुग है, इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, उसी तरह से भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो अच्छे भक्त होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? कोई कठिन नहीं है, बस 4 नियम हैं और 4 यम हैं और 5 नियम हैं। बस ये 9 चीजें अगर आप करते हो ना तो आप भक्त बन गए समझो। टोटल 9 चीजें ही एक भक्त को करनी होती है और कुछ नहीं करना है। 4 यम है, यम का मतलब होता है वो 4 चीजें आपको नहीं करनी है, और 5 नियम है यानी कि वो आपको करनी है। अब 4 चीजें जो करनी है वो कौन सी है, 4 चीजें आपको नहीं करनी है, 4 चीजें आपको नहीं करनी है, और पांच चीजें आपको करनी है। तो पहले कौन सी सुनाऊं, जो करनी है वो सुनाऊं, जो नहीं करनी है वो सुनाऊं? मैं समझती हूँ जो नहीं करनी है ना पहले वो सुननी चाहिए, क्योंकि जब आग लगती है तो पहले निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले जीवन में जो गलत कार्य हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। क्या चीज है जो हम कर रहे हैं वो हमें खत्म करनी है, उनको बंद करना है, तो फिर हम अच्छे काम करें। कौन से हैं वो बाद में करेंगे, पहले गलत काम को बंद करना ज्यादा जरूरी है। तो चार चीजें हैं जो नहीं करनी है और पांच चीजें हैं जो करनी है। टोटल नौ चीजों पर भक्ति का जीवन आधारित है, और ये करते रहेंगे, कंटिन्यू शुद्ध भक्ति करते रहेंगे तो इस जीवन में ही हमें भगवान की तरफ आसक्ति स्टार्ट हो जाएगी और संसार से हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो आइए अब संक्षिप्त में ये भी बता दूं कि चार चीजें जो नहीं करनी है। हम लोग या श्री प्रभुपाद जी अपनी बुद्धि से नहीं बता रहे, ऐसा मत बोलना कि ये हरे कृष्ण वालों की एक योजना है, उसके हिसाब से ये चार काम नहीं करने आपको। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंद में आया है। क्या आया है कि धर्म के चार चरण है, जो हमारा धर्म है ना उसके चार चरण है, उसके चार स्तंभ हैं जिस पर ये धर्म की दीवार टिकी हुई है। धर्म की जो बिल्डिंग है वो इन चार चरणों पर टिकी हुई है। क्या? दया, दया सत्यम तपः शौचम, ये चार चीजें हैं। द्यूत और है ना, इन इन चार चीजों को अगर हम हमें रखना है, इन चार पिलर्स को हमें संभाल के रखना है। अगर इनमें से कोई एक भी पिलर गिर जाएगा तो हमारे धर्म की दीवार, धर्म की बिल्डिंग नाश हो जाएगी। इसलिए भागवत कहता है कि अधर्म के रहने की चार जगह है। अधर्म जब आया था, जब कलयुग आया था, तो महाराजा परीक्षित ने उन्हें चार स्थान में रहने की जगह दी थी और कहा, द्यूतम पानम सुनामृत्यम यत् धर्मम चतुर्विधा, जहाँ पर ये चार अधर्म हो रहे हैं। द्युत यानी जुआ, पान मतलब शराब, सोना मतलब मांस आहार, मृत्यम यानी पर स्त्री संघ या पर पुरुष का संघ, जहाँ पर ये चार अधर्म होते हैं, ये चार चीजें जो करता है उसके दया सत्य और ये पवित्रता और तपस्या के ये चारों पिलर खत्म हो जाते हैं। जैसे जुआ खेलते हैं तो हमारी सत्यता का नाश हो जाता है, शराब पीते हैं तो हमारी तपस्या का नाश हो जाता है, सुनावृत्ता यानी मांस आहार जब हम करते हैं तो हमारी दया का नाश हो जाता है, और अगर हम परस्त्री संघ या परपुरुष संघ करते हैं तो हमारी हमारी पवित्रता का नाश हो जाता है। यानी कि जुआ खेलने से क्या होगा, हमारी सत्य का नाश होगा। शराब पीने से क्या होगा, हमारी तपस्या का नाश होगा। मांसाहार करने से क्या होगा, हमारी दया का नाश हो जाएगा। और अगर हम पर स्त्री या पर पुरुष संग करते हैं तो हमारी पवित्रता का नाश हो जाएगा। धर्म के ये चारों पिलर जो हैं वो टिके हुए हैं इन चार सिद्धांतों के ऊपर। इसीलिए जो भी भगवान की भक्ति करता है, जो ये अकर्म करना चाहता है, सबसे पहले नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना चाहिए। क्यों? दया को नाश कर देता है। नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए। द्यूतम, सत्य को नाश कर देता है। नो एनोक्सिकेशन यानी कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, तपस्या को नाश करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त कोई भी अवैध संबंध नहीं रखना है, अवैध स्त्री या पुरुष का संबंध नहीं करना है। ये सारी चीजें पवित्रता का नाश करना। ये चार चीजें समझ में आ गई है तो सबको पता भी है, चार नियम है हमारे। अब जो करना है उसके 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 बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना है भक्त बनने के लिए। पहला है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये पांच साधन महाबल हैं। यदि आप अकर्म करना चाहते हो, यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो, यदि आप कर्मों के बंधन से छूटना चाहते हो तो ये पांच काम आपको करने हैं। कौन कौन से? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धार सेवा, भक्तों का संग करना। पहला है साधु संग, कृष्ण भक्ति मूल है साधु संघ। यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है साधु संघ। यदि आप चाहते हो कि सांसारिक आपकी आसक्ति खत्म हो तो आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा। जैसा संघ होगा वैसा ही आपको रंग लगेगा। यदि हम भक्तों का साथ रहेंगे तो कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिलेगा, कृष्ण नाम को जप करने का अवसर मिलेगा, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिलेगा। और उसके बाद है नाम कीर्तन, यानी भगवान के पवित्र नाम का जप रेगुलर करना है। रेगुलर हमें श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक दिन में 16 माला जप करनी चाहिए। 16 क्यों? क्योंकि हम एक दिन में 24,000 से 26,000 के बीच में सांस लेते हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी कुछ लोग धीरे धीरे, तो हम 16 माला करते हैं तो एक माला में 108 मंत्र होते हैं और 16 माला में 27,028 नाम होते हैं। 27,028 नाम होते हैं, एक महामंत्र में 8 नाम होते हैं, एक महामंत्र में 16 नाम होते हैं। 4 बार राम आता है, 4 बार कृष्ण आता है और 8 बार हरे आता है। भगवान हृदय में आकर हमारी समस्त मलिनता को दूर कर देते हैं यदि हम एक दिन में 16 माला का जप करते हैं। पहला है साधु संग, दूसरा है नाम कीर्तन, तीसरा है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ पुराण है। इसका श्रवण करने से होता क्या है? सद्यो रिद्य वरुद्यते तकृति भी शुश्रूषुभे तत्क्षण, फौरन से इंस्टेंट कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है। इवन आप भागवतम को श्रवण करने के लिए पूरा नहीं श्रवण करो, खाली उसको श्रवण करने के लिए बैठते हैं ना, तो भागवत कहता है कि आपके सद्यो का मतलब होता है इंस्टेंट, एट ए टाइम आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जो है वो उद्घाटन हो जाता है, कृष्ण के लिए प्रेम सलसला उठता है। यदि किसी शुद्ध भक्त के मुख से आपको भागवतम श्रवण करने का अवसर मिलता है ना, फिर और कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है भागवतम श्रवण करने के बाद आपको उसको फॉलो करना है, भागवतम श्रवण करना ही भक्ति है। खाली आप भागवतम के विषय में श्रवण करते हो ना तो आप कृष्ण प्रेम को अर्जित करते हो। चौथे नंबर पे अष्टा विग्रह की सेवा करना। घर पर बहुत सुंदर भगवान की विग्रह रखनी चाहिए, उसको पूजा करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, भगवान को प्रसाद अर्पण करना चाहिए, भगवान से बात करनी चाहिए, भगवान से रिलेशन कायम करना चाहिए, ताकि हमारे हृदय में संसार की जो आसक्ति है वो खत्म हो जाए। और आगे है धाम वास, यानी गोकुल मथुरा वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी। श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि अब तो वही धाम हमारे अपने घरों में आ गए हैं। अब हर जगह मंदिर है, हम जा सकते हैं, मंगल आरती के लिए जा सकते हैं, या फिर घर में भी हम सेवा कर सकते हैं। हर वो जगह जहाँ कृष्ण है वो भगवान का धाम ही है। अब ये यहाँ पर 5 आपको मैंने बातें बताई जो कि हमें करनी है और 4 ऐसी बातें बताई जो कि नहीं करनी है। यदि ये 9 नियम हम करते हैं तो हम भक्त बन जाते हैं और हम नए कर्म नहीं बनाते हैं, भगवान के धाम में जाने के योग्य बन जाते हैं। बस ये 9 काम करने हैं आपको। और इसके अतिरिक्त अगर आप में से कोई ये कहे कि हम ये सारे काम नहीं कर सकते, साधु संग नहीं मिलता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं कर सकते, हम धाम में नहीं जा सकते, तो ओके सब रहने दो। सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी तरह से 2 काम आपको करने हैं, सिर्फ 2 काम, भगवान की श्रवण करना, भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान के नाम का जप करना। बस ये भक्ति है आज के कलयुग के लिए। केस ये न के न प्रकारे आपको श्रवण करना है, किसी भगवान से प्रार्थना करनी। अगर नहीं मिल रहा है कोई ऐसा शुद्ध भक्त का संग जो आपको भगवान के विषय में बता सके, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, अब हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, बहुत समय गंवा दिया, अब किसी न किसी तरह से हमें श्रवण करने का मौका दो, ताकि हम श्रवण नहीं करेंगे तो हमें भले पता भी होगा ना कि हमें भगवान का नाम लेना है, फिर भी जप नहीं करेंगे। तो श्रवण की रस्सी को टाइट पकड़ना है, फिर ही हमारा जो है ना जप अच्छा होगा। बस श्रवण करो और कीर्तन करो, यही इस कलयुग के लिए सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये 2 काम करने हैं। यहाँ पर हमारे समस्त जो टॉपिक्स थे वो तकरीबन खत्म हो गए हैं। अब मैं सिर्फ आपको कल जो है वो नाम के विषय में, नाम की महिमा के विषय में कुछ बताऊंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्रेम से सुना। हरे कृष्ण।